तारापरी को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ कि आज उसे पता चल ही जाएगा नेक दिल इंसान के बारे में। बस एक बार सोनल परी अपनी जादुई शक्ति से अमन को वश में कर ले और वो अंगूठी अमन के हाथ से छू दे, बस तारा जल्दी से उस पल का इंतजार कर रही थी। रात अपने पूरे शबाब पर थी। सोनल परी अमन के कमरे में जा चुकी थी, लेकिन अमन के कमरे में मान को भी सोया हुआ देखकर सोनल परी का सिर चकरा गया। दोनों ने नाइट कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों में से अमन कौन था ये पता लगाना बेहद मुश्किल था। सोनल परी वहां से गायब होकर तारा परी के पास गई और उसे सब बताया कि कैसे अमन और मान एक जगह सोए हुए थे। ये सुनकर तारा परी काफी उदास हो गई और बोली, तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सोनल परी ने हाँ में सिर हिला दिया और तारा परी सफ़ेद मोतियों की जादुई माला पहनकर अदृश्य हो गई और सोनल परी के साथ अमन के कमरे की ओर चल दी। तारा परी ने वहां जाकर देखा तो वो भी चौंक गई, क्योंकि वाकई वो दोनों एकदम एक जैसे लग रहे थे। एक जैसे सोए हुए थे और एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे। उनमें से अमन कौन है या मानसिंह राठौड़ कौन है, इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तारा परी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया और मन ही मन सोनल परी से कहने लगी, तू अपनी ये वश में करने वाला आइडिया इस मानसिंह राठौड़ के आने से पहले नहीं दे सकती थी। अब देखा तूने, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अब क्या करें। सोनल परी भी थोड़ी दुखी आवाज़ में बोली, मुझे जब पहले इस बात का ख्याल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। मुझे तो ये आइडिया उस मल्लिका से आया जब उसने अमन को वश में करके अपनी मनमानी करना चाही थी। खैर तो फिकर ना कर, मैं अभी कुछ करती हूँ। पता तो मैं आज ही लगा कर रहूँगी, क्योंकि अगर आज मैं पता नहीं लगा पाई तो कभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी। शायद तुम भूल रही हो, कल पूर्णिमा की रात है। तारा परी को जैसे ही ये याद आया वो और भी परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर सोनल परी बिना उसकी मदद किए चली गई तो वो कैसे पता लगा पाएगी। उसे तो अपनी शक्ति प्रयोग करने की अनुमति भी नहीं थी। तारा परी को यूं उदास देखकर सोनल परी से रहा नहीं गया और उसने ठान लिया कि वो अभी और आज ही तारा परी की मदद करेगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अमन की साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग नीचे गिरा दिया और पानी के गिरते ही पानी के बर्तन की आवाज़ से वे दोनों भाई एक झटके से उठकर बैठ गए और अमन ने आगे बढ़कर अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी। तभी लेफ्ट साइड में बैठा हुआ मानसिंह राठौड़ बोला, भाई क्या हुआ, ये कैसी आवाज़ थी। तारा परी और सोनल परी जो वहीं खड़ी हुई थीं वो ये जान चुकी थी कि इनमें से अमन कौन है और मान कौन है, इसलिए सोनल परी अपने असली रूप में वहां आ गई थी। मान अभी ये पूछ ही रहा था कि ये आवाज़ कैसी है और इससे पहले कि अमन कुछ बोलता एक बेहद खूबसूरत परी वहां उनकी आंखों के सामने आ गई थी, जिसे देखकर मान का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो बिना पलक छपके उसे देखता रहा। लेकिन अमन को उसकी खूबसूरती से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, उल्टा वो उससे बेहद गुस्सा हो गया था और वो आंखों में गुस्सा लाते हुए बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। अमन ने काफी सख्त लहजे में पूछा था। अमन की आंखें एकदम सुर्ख हो गई थीं। सोनल परी अमन की आंखें देखकर डर गई थी और वो सोचने लगी, अगर इसे ज्यादा गुस्सा आ गया तो कहीं ये जिन्ना बन जाए, फिर तुम्हें गई काम से। अमन की बात सुनकर सोनल परी के बोलने से पहले मानसिंह राठौड़ बोल पड़ा, अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, कोई इतनी खूबसूरत लड़की से क्या इस तरह बातें करता है। अमन, इसकी खूबसूरती पर मत जा, ये जरूर वही चुड़ैल काली जिन होगी मल्लिका जो मुझसे रिश्ता बनाने के ख्वाब देख रही है। मान, अरे भाई, अगर चुड़ैल भूत जिन इतने खूबसूरत हैं तो आज से मुझे मोहब्बत है चुड़ैलों से। मान अपनी ही धुन में मस्त बोल रहा था। अमन ने उसे घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। तब सोनल परी ने बिना कुछ उन दोनों से बोले अपने हाथ में पानी लिया और कुछ पढ़कर उस पानी पर फूंक दिया और इससे पहले कि अमन या मान कुछ कह पाते सोनल परी ने वो पानी उन दोनों के मुंह पर दे मारा था और पानी के गिरते ही वे दोनों कुछ पल के लिए बेहोश हो गए थे। उन्हें बेहोश देखकर तारा परी ने सोनल परी से कहा, ये सब क्या है, तुम्हें इन्हें वश में करना था, इन्हें सुलाना नहीं था। सोनल परी, इन्हें कुछ पल के लिए सुलाना जरूरी था, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इन दोनों को मैं याद रह जाती और वश निकलने के बाद भी ये लोग मुझे याद रखते, भूल नहीं पाते, इसलिए इनकी याददाश्त मिटाने के लिए ये जरूरी था। तारा परी, तो अभी इन्हें होश कब तक आएगा। सोनल परी, अभी कुछ ही देर में ये लोग उठ जाएंगे और यकीन करो ये दोनों अब पूरी तरह से हमारे वश में हैं, तुम जो चाहो इनसे करा सकती हो, और हाँ, अमन ये है और मान ये। तारा परी ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और वे दोनों, तारा परी और सोनल परी, उन दोनों अमन सिंह राठौड़ और मान सिंह राठौड़ के होश में आने का इंतजार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर मल्लिका के बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो जल्द से जल्द अमन के साथ रिश्ता कायम करे और वो तिलिस्मी पत्थर उसे ला कर दे। मल्लिका का बॉस कितनी असीमित शक्तियों का बादशाह था और अगर उसे वो तिलिस्मी पत्थर मिल जाता तो वो काली शक्तियों के साथ साथ सफ़ेद शक्तियों का भी बादशाह बन सकता था। अगर वो उसका कहा नहीं कर पाई तो वो उसे हमेशा के लिए काली बिल्ली बनाकर कैद कर देगा। मल्लिका ये सुनते ही कांपने लगी और अपने मालिक के मुंह से धमकी सुनकर उसकी आंखें भर आईं। मल्लिका की आंखों में काले काले रंग के आंसू थे। जैसे ही मल्लिका के गाल से एक आंसू लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिरा वो उसी समय एक काले कीड़े में बदल गया और लगातार कितने ही आंसू उसके गालों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े और वे सभी काले खतरनाक कीड़े बनते चले गए। क्योंकि वे मल्लिका के आंसू से बने कीड़े थे, इसलिए वे मल्लिका के गुलाम थे। मल्लिका ने रोते रोते उन कीड़ों से कहा था, ए मेरे आंखों के आंसू, जाओ जाकर बदला लो उससे जिसकी वजह से ये तुम लोग बाहर आए हो। जाओ और बदला लो उससे और उसकी जांघ पर काट लो। जैसे ही तुम सब उसकी जांघ पर काटोगे, उसी पल उसके जिस्म में मल्लिका के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। जाओ और जाकर मेरा काम पूरा करो। मल्लिका की बात सुनते ही वे सारे कीड़े अमन के बंगले की ओर चल पड़े थे। वहीं कुछ ही समय के बाद वे दोनों भाई उठ चुके थे और वे दोनों पूरी तरह से सोनल परी के वश में थे। उन्हें चेक करने के लिए सोनल परी ने कपड़ा नीचे फेंका और अमन से कहा, मेरा हुक्म है, इस कपड़े को उठाकर ऊपर रखो। अमन ने वैसा ही किया और वो कपड़ा उठाकर ऊपर रख दिया। तब सोनल परी ने एक तकिया नीचे गिराया और मान को हुक्म दिया कि इस तकिए को उठाकर ऊपर रखो। मान ने वैसा ही किया। अब सोनल परी को संतुष्टि हो गई थी कि ये दोनों भाई अब पूरी तरह से उसके वश में हैं। और अपनी तसल्ली करने के बाद उसने तारा परी को असली रूप में आने को कहा और जल्दी ही तारा परी अपने असली रूप में आ गई और सीधा जाकर अमन के सामने खड़ी हो गई। अमन भी उसे देखता रहा, लेकिन वो कुछ भी कहिया सुन नहीं पाया क्योंकि वो सोनल परी के वश में था। वो तो बस केवल उसे देखता रहा। तब तारा परी ने देर न करते हुए अपने हाथ में से वो तिलिस्मी अंगूठी निकाल दी और सोनल से कहा, अमन को संगूठी पहनने का हुक्म दे। अमन और मान सोनल परी की ही बात सुन सकते थे क्योंकि वे उसके वश में थे।
सोनल परी ने तारा परी के हाथ से अंगूठी ली और अमन को हुक्म दिया, ये अंगूठी अपने हाथ में पहनो, ये मेरा हुक्म है। ये सुनते ही अमन ने सोनल परी के हाथ से अंगूठी ली और पहन ली। तभी उस अंगूठी में से एक तेज सी रोशनी निकलने लगी और वो कभी लॉकेट तो कभी अंगूठी में दिखाई देने लगी। ये देखकर तारा परी और सोनल परी खुश हो गई थी कि अभी अंगूठी लॉकेट बनने ही वाला है, क्योंकि उसमें से लॉकेट की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंगूठी लॉकेट न बनकर वापस अंगूठी में बदल गई थी। और लॉकेट को फिर से अंगूठी में बदलता देख तारा परी और सोनल परी दोनों उदास हो गई। फिर सोनल परी ने अमन को वो अंगूठी उतारने का हुक्म दिया और जब अमन ने वो अंगूठी वापस सोनल परी को दे दी, तब तारा परी बोली, ये क्या हुआ, ये अंगूठी लॉकेट बनते बनते कैसे रह गई? आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर ये हो क्या रहा है? तब सोनल परी ने कहा, रुको, एक काम करते हैं, एक बार मान सिंह राठौड़ को भी ये अंगूठी पहनने को कहते हैं। तारा परी हैरानी से, लेकिन क्यों? सोनल परी, तुम क्या देख नहीं रही हो, ये दोनों एक जैसे हैं, जुड़वा है। हो सकता है वो नेक दिल इंसान जैसे हम ढूंढ रहे हैं वो अमन ना होकर मान सिंह राठौड़ हो। तब सोनल परी ने मान सिंह राठौड़ को हुक्म दिया कि ये अंगूठी पहनो और मान ने ऐसा ही किया। और जैसे ही मान ने वो अंगूठी पहनी, उसमें से भी एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और एक बार फिर वो अंगूठी कभी लॉकेट में बदलती तो कभी अंगूठी, और कुछ तक ऐसा ही होता रहा और वो अंगूठी एक बार फिर से लॉकेट बनते बनते रह गई थी। तारा परी और सोनल परी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी और काफी हैरान थी। तारा परी की मायूसी अब उसकी आंखों में सिमट आई थी, उसे नेक दिल इंसान मिलकर भी नहीं मिला था। तब सोनल परी ने मान सिंह राठौर से वो अंगूठी वापस ले ली थी और कुछ देर बाद वो कुछ सोचने लगी। फिर सोनल परी ने वो अंगूठी तारा परी के हाथ की हथेली पर रख दी और अमन सिंह राठौड़ और मान सिंह राठौड़ को हुक्म दिया, तुम दोनों एक साथ वो अंगूठी छू लो। सोनल परी का इतना ही कहना था कि उन दोनों भाइयों ने एक साथ वो अंगूठी छू ली थी और उसमें से एक बड़ी ही तेज रोशनी निकलने लगी थी और देखते ही देखते वो अंगूठी लॉकेट में बदल चुकी थी।